नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने कड़छम वांगतू जलविद्युत परियोजना से रॉयल्टी को लेकर प्रदेश सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला, अब कंपनी राज्य को देगी 18% रॉयल्टी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को दी मंजूरी, देश के 1,70,00,000 किसानों को मिलेगी मदद। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेशवासियों से निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की मदद करने की अपील की। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों से आपदा के दौरान निष्ठा व समर्पण भाव से कार्य करने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने किन्नौर जिले में स्थापित कड़छम वांगतू जलविद्युत परियोजना से रॉयल्टी को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। इस फैसले के तहत अब जेएसडब्ल्यू एनर्जी कंपनी को 1045 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना से प्रदेश को 12% के बजाय 18% रॉयल्टी देनी होगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
कड़छम वांगतू जलविद्युत परियोजना से रॉयल्टी को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण कानूनी सफलता मिली है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से प्रदेश सरकार को लगभग 150 करोड़ रुपए की वार्षिक अतिरिक्त आय होगी। इसके अलावा 12 वर्ष पूर्ण कर चुकी अन्य परियोजनाओं के लिए भी ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा और राज्य के खजाने में प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपए से अधिक की आय अर्जित होने की उम्मीद है। अदालत के फैसले के अनुसार 1045 मेगावाट क्षमता वाली कड़छम वांगतू जल विद्युत परियोजना से जेएसडब्ल्यू एनर्जी कंपनी राज्य को अब 12% की बजाय 18% रॉयल्टी देगी। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय प्रदेश उच्च न्यायालय के मई 2024 के आदेश को निरस्त करता है, जिसमें कंपनी को केवल 12% रॉयल्टी देने की अनुमति दी गई थी। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना से देश के 1,70,00,000 किसानों को मदद मिलेगी।
100 ऐसे जिले देश भर में और हर राज्य से कम एक जिला जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाएगी। टेक्नोलॉजी पार्टनर्स चयनित किए जाएंगे, एग्रीकल्चर से जुड़े पूरे सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा जाएगा। इस तरह से किया जाएगा जिससे कि ये 100 चयनित जिले देश के एवरेज और उससे ऊपर आ, करीब करीब 1,70,00,000 किसानों को इससे लाभ होगा। आने वाले 6 वर्षों का कार्यक्रम है, 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद व हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, संगठनात्मक गतिविधियों और विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। अग्निहोत्री ने रजनी पाटिल को प्रदेश सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी और केन्द्र से अपेक्षित सहयोग के संदर्भ में भी विचार विमर्श किया। रजनी पाटिल ने पार्टी संगठन को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में प्रदेश में बादल फटने और बाढ़ की घटनाओं के दृष्टिगत राहत व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने आपदा प्रबंधन के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने को स्वीकृति दी। इस प्रणाली के माध्यम से समय समय पर मौसम की निगरानी, पूर्वानुमान और चेतावनी की सुविधा सुनिश्चित होगी। बैठक में आपदा के समय राहत व बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लेने का भी निर्णय लिया गया ताकि राहत कार्यों में सहायता मिल सके। राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक अन्य बैठक में मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए भूमि नियमितीकरण से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की। बैठक में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह और नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश टीबी उन्मूलन की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राज्यपाल ने टीबी हारेगा प्रदेश जीतेगा देश जीतेगा अभियान को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रदेशवासियों से निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा टीबी मुक्त भारत अभियान आरंभ किया गया है जिसका उद्देश्य देश व प्रदेश को टीबी संक्रमण से मुक्त करना है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। वे आज सोलन जिला के बद्दी में राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का निरीक्षण करने के बाद दवा उद्योगपतियों और अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। शांडिल ने कहा कि बद्दी स्थित औषधि प्रयोगशाला देश की 3 सर्वश्रेष्ठ दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं में से एक है और उत्तर भारत की ये एकमात्र प्रयोगशाला है जिसमें प्रतिवर्ष 6000 दवा सैंपल परीक्षण की क्षमता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायत प्रतिनिधियों से प्राकृतिक आपदा के संकट के दौरान पूरी निष्ठा व समर्पण भाव के साथ अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। उन्होंने आज क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करने सहित राहत कार्यों की प्रगति पर चर्चा की। जयराम ठाकुर ने आपदा राहत कार्य अधिक प्रभावी, तेज और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने सहित प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों की स्थिति साझा की और जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर रखा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की आर्थिकी में सेब का महत्वपूर्ण योगदान है और राज्य की आर्थिकी को और अधिक मजबूत करने के लिए सेब की नई किस्में तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने आज डॉ यशवंत सिंह परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति राजेश्वर चंदेल से बागवानी सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। रोहित ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय को निरंतर शोध के माध्यम से बागवानों को सेब फसल विविधीकरण की दिशा में अवगत करवाना चाहिए। किन्नौर जिले में सांगला तहसील की थैमगारंग पंचायत के 19 डोगरा रेजिमेंट में तैनात नायक पुष्पेंद्र नेगी असम में ड्यूटी के दौरान बलिदान हो गए हैं। जानकारी के अनुसार असम में तेज हवाओं के कारण पेड़ की टहनियों की चपेट में आने से उनका निधन हो गया। नायक पुष्पेंद्र नेगी 29 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डोगरा रेजिमेंट के नायक पुष्पेंद्र नेगी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर जवान को प्रदेश हमेशा श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ याद करेगा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी नायक पुष्पेंद्र नेगी की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सीटू और किसान सभा के बैनर तले शिमला फोरलेन के प्रभावितों ने आज चक्कर स्थित एनएचएआई के दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि फोरलेन निर्माण कर रही कंपनियों द्वारा अवैज्ञानिक तरीके से सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है जिससे कैथली घाट से ढली तक 9 पंचायतों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कड़छम वांगतू जलविद्युत परियोजना से रॉयल्टी को लेकर प्रदेश सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला। अब कंपनी राज्य को देगी 18% रॉयल्टी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को दी मंजूरी। देश के 1,70,00,000 किसानों को मिलेगी मदद। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेशवासियों से निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की मदद करने की अपील की। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों से आपदा के दौरान निष्ठा व समर्पण भाव से कार्य करने का किया आग्रह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।